अब मैं भारतीय पक्ष की ओर ध्यान दूंगा ताकि पारंपरिक समाज के उन समुदायों को पहचाना जा सके जो पश्चिमीकरण में दूसरों से आगे थे, और उनके कुछ एक लक्ष्यों, विचारों और संघर्षों का भी वर्णन करूंगा। मैं उन्हें नए अभिजन कहूंगा क्योंकि उनमें तो कोई संदेह नहीं कि उनका एक विशिष्ट अभिजात समूह था और नए भारत को लाने में उनका योग प्राथमिक था। मैं उन्हें मध्य वर्ग नहीं कहूंगा क्योंकि इस शब्द का विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अर्थों में उपयोग किया है, और मैं निश्चय पूर्वक यह भी नहीं कह सकता कि ये नए अभिजन, उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय, ठाकुर परिवार के सदस्य और स्वामी विवेकानंद सदा मध्य वर्ग के ही होते थे। भारतवासियों का बहुत ही छोटा सा अंश अंग्रेज या अन्य यूरोप वासियों के सीधे प्रत्यक्ष संपर्क में आया, और जो ऐसे संपर्क में आए भी वे सदा परिवर्तन में सहायक नहीं हुए। उदाहरण के लिए अंग्रेजों के भारतीय नौकर चाकरों का संभवतः अपने रिश्तेदारों या स्थानीय जाति समूहों में कुछ प्रभाव होता था, पर दूसरों पर नहीं। वे आम तौर पर निचली जातियों के लोग होते थे, उनका पश्चिमीकरण सतही ढंग का था, और उच्च जातियों के लोग उनकी खिचड़ी अंग्रेजी उनकी और अपने मालिकों के लिए असंगत भक्ति और उनकी शेखी बघारने की हंसी उड़ाते थे। इसी प्रकार हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बनने वालों का भी संपूर्ण भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव न था, क्योंकि एक तो ये लोग भी आम तौर पर निचली जातियों के थे, और दूसरे धर्म परिवर्तन उन्हें अधिकांश हिंदू समुदाय से पृथक कर देता था। अंत में ईसाई बनने से अक्सर केवल उनका धर्म ही बदलता था, रीति रिवाज, सामान्य संस्कृति अथवा धर्म परिवर्तन करने वालों की सामाजिक स्थिति नहीं। जहां तक बहुसंख्यक जन समुदाय का प्रश्न है, पश्चिमीकरण परोक्ष रूप से और धीरे धीरे हुआ। यह प्रक्रिया 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद से कई प्रकार से बहुत तीव्र हो गई है। पश्चिमीकरण की दिशा में पहला और सबसे महत्व का कदम था अंग्रेजी राज के अंतर्गत कोई युद्ध न होने के सिद्धांत की स्थापना, और उसके बाद होने वाली संचार साधनों में क्रांति। प्रशासन और व्यापार की सीमाओं के विस्तार ने जंगलों भरे पहाड़ों में रहने वाले जनसमूहों का सदियों पुराना निर्वासन तोड़ दिया, और उनके लिए नए संपर्क तथा अवसर सुलभ बनाए। संचार साधनों के विकास और आंतरिक चुंगी के हटने से देश के विभिन्न प्रदेशों की अर्थव्यवस्था एक हो गई। भाप से चलने वाले जहाजों के चलन और स्वेज नहर के बनने 1869 से ब्रिटेन को न केवल भारत और अपने पूर्वी साम्राज्य के अन्य भागों पर नियंत्रण बढ़ाने में, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया के साथ जोड़ने में भी सहायता मिली। नील सन, कपास, तंबाकू, चाय और कॉफी को यूरोपी बागान मालिकों विदेशों में खपत के लिए भारत में पैदा करने लगे। इन वस्तुओं के दुनिया के बाजार में मूल्यों का देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों के रहन सहन के लिए महत्व हो गया। बागानों में प्रारंभ से दो बागान क्षेत्रों में आसाम और बंगाल की पहाड़ी इलाकों और पश्चिमी घाटों के दक्षिणी इलाकों में मजदूर का स्थानांतरण प्रारंभ हो गया, और इनमें से भी काम करने वाले मजदूरों की संख्या और फसलों के मूल्यों दोनों ही दृष्टियों से आसाम क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण था। आसाम ने न केवल पड़ोस के राज्यों से बल्कि आधुनिक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मद्रास से मजदूरों को आकर्षित किया, जबकि पश्चिमी घाटों के आसपास के घने बसे हुए क्षेत्रों से ही मजदूर आए। चाय बागान 1840 में शुरू हुए, और उनमें काम के लिए मजदूरों का आया 13 वर्ष बाद। मजदूरों के आने जाने में 1843 में दास प्रथा के अंत से बड़ी आसानी हुई, क्योंकि उससे आसामियों और दासों को, जो आमतौर पर बहुत नीची हरिजन जातियों के होते थे, उच्च जातियों के भूस्वामियों से बांधे रखने वाले कानूनी बंधन खत्म हो गए। इस संबंध में यह बात दिलचस्प है कि दक्षिण भारतीय बागानों के मजदूर अधिकांशतः हरिजन जातियों से आए थे, जबकि आसाम के बागानों के मजदूर कुलीन जातियों, हरिजनों और मुंडा तथा बंगाल संथाल जैसी जनजातियों से आए थे। भारत का बाहरी दुनिया के साथ अधिकाधिक समीपी एकीकरण इस बात में भी देखा जा सकता है कि 1850 के बाद के करार व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय मजदूर लंका, मलेशिया, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, कैरिबियन द्वीप समूह और ब्रिटिश गियाना जैसे अंग्रेजों के मध्य अधीन देशों में भेजे जाने लगे। 1834 से 1908 के बीच जब भारतीय मजदूरों के विदेश उत्प्रवास पर कोई प्रतिबंध न थे, कोई 1,40,00,000 लोग भारत से गए और बाद में कोई 1,00,00,000 करार व्यवस्था तथा कार्य परिस्थितियों की कठोरता से जाति भेदभाव के कारण लौट आए। संक्षेप में, भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण ने ऐसी प्रक्रिया जो 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में भी चालू है, जिसके लिए संचार साधनों का विकास, औद्योगिकरण के आसपास और कृषि संबंधी विकास आवश्यक था, स्थानमूलक और सामाजिक गतिशीलता को न केवल विशिष्ट वर्ग बल्कि देहातों के गरीब लोगों के लिए भी बढ़ा दिया गया और परवर्ती राष्ट्रव्यापी पश्चिमीकरण की नींव डाली। किंतु यहाँ मेरी चर्चा का मुख्य संबंध उन लोगों से है जिन्होंने अधिक तात्कालिक अर्थ में पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं में भाग लिया, नई शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा ली, पेशों में प्रवेश किया, सरकारी नौकरियां ली और बड़े बड़े तथा विकासशील नगरों में व्यापार, व्यवसाय और उद्योगों में लगे। इससे भी कहीं अधिक संख्या में लोगों का पश्चिमीकरण माध्यमिक अर्थ में हुआ। उदाहरण के लिए, अस्पतालों में रोगियों का, अदालतों में मुकदमेबाजों का और भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों और पुस्तकों के पाठकों का। भौगोलिक दृष्टि से तटवर्ती क्षेत्रों के निवासी विशेषकर तेजी से बढ़ने वाले बंदरगाही नगरों के पास रहने लगे। प्रारंभिक पश्चिमीकरण के लिए बड़ी अनुकूल परिस्थिति में थे। कलकत्ता, बंबई और मद्रास के आसपास के क्षेत्रों को पश्चिमीकरण का अनुभव पंजाब जैसे अंतर्वर्ती क्षेत्रों से 100 वर्ष या उससे भी अधिक पहले से मिला और इसी तरह अंग्रेज इलाकों से की अपेक्षा देसी रियासतों के निवासी परिवर्तन की नई हवाओं से अधिक सुरक्षित थे। किंतु मैसूर, त्रिवांकुर और बड़ौदा जैसी कुछ रियासतें इसका अपवाद थी, जिनमें पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने अथवा उसके कुछ पक्षों ने मुख्यतः उनके निरंकुश किंतु प्रबुद्ध शासकों की शक्ति, प्रतिष्ठा और पहल के कारण अधिक उन्नति की। कलकत्ता, बंबई और मद्रास के 3 प्रेसिडेंसी नगरों ने भारतीय जनता के उन अंशों को आकर्षित किया जिनमें शुरू से ही नए व्यावसायिक, शैक्षिक तथा अन्य अवसरों के प्रति अधिक सजगता थी। व्यापारियों और महाजनों को अंग्रेज शासित क्षेत्रों में न केवल जान माल की सुरक्षा का भरोसा मिला बल्कि राजनीतिक शक्ति के निरंकुश उपयोग से भी छुटकारा मिला। तांगरी के अनुसार इस भांति बंदरगाही नगरों में बढ़े हुए मध्य वर्ग में मुख्यतः गैर मुस्लिम लोग थे। पश्चिमी शिक्षा ने उन्हें शासक अभिजनों के साथ मिलने जुलने का अवसर दिया। उनके लिए सरकारी और व्यावसायिक दफ्तरों में नौकरी की संभावनाएं प्रस्तुत की, उनकी सामाजिक स्तर जुटाया, उठाया और बढ़ती हुई विदेशी कारोबारी फर्मों से बेहतर व्यावसायिक संपर्क जुटाए। किंतु अभिजनों के स्थान के बारे में विशुद्ध भौगोलिक दृष्टिकोण ठीक नहीं होगा। उदाहरण के लिए, पंजाब पश्चिमीकरण के प्रभाव में यद्यपि तटवर्ती क्षेत्रों की अपेक्षा कहीं बाद में आया, पर वहां के कुछ जाति समूह जैसे खत्री, अरोरा और अग्रवाल परंपरा से व्यापार और वाणिज्य करते आए हैं और मुनाफे की संभावना से बहुत सहज ही प्रोत्साहित होते हैं। राजस्थान का सूखा अंतर्वर्ती प्रदेश अपनी व्यापारी जाति मारवाड़ियों के लिए प्रसिद्ध ही है, जो भारत के हर बड़े नगर में व्यापार, उद्योग और बैंकों में जमे हुए हैं। अंग्रेजी शासन के दिनों में इन विभिन्न समूहों ने न केवल अपने अपने प्रदेशों में बल्कि बाहर भी व्यापार और वाणिज्य के अवसरों का लाभ उठाया। कुछ लोग विदेशों में अन्य अंग्रेजी उपनिवेशों में भी पहुंचे और वहां के व्यापार वाणिज्य में जम गए।